अभी हम इस सत्र को शुरुआत करते हैं कि प्रश्न आपके जवाब हमारे। तो काफी सारे प्रश्न आए हैं, तो आपके जवाब देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच तीन हस्तियां आ रही हैं। एक दो हस्तियों को तो आप परिचित हो ही, लेकिन दो क्षेत्र से है दो बहनें हमारी, आदरणीय राधिका दीदी, आदरणीय पद्मा दीदी, उनको मैं निवेदन करती हूँ कि मंच पर आकर वे अपना स्थान ग्रहण करें। ये दो हस्तियां आप देख रहे हो कि जिन्होंने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में अर्पित किया है। राधिका बेन से तो परिचित है ही, तो पद्मा दीदी 30 साल से ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। वर्तमान समय कोलकाता में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कहा जाए तो हम जो देख रहे हैं, जैसे आज साधना दीदी ने परिचय दिया, इन्हीं से ही सीखकर हम भी ऐसे आगे बढ़े। पहले पार्ला में थे और काफी ऐसे अलग अलग कंपनी, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने प्रोग्राम कराए, SML, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थ्रू मेडिटेशन, ऐसे कई प्रकार के कई कंपनी में आप प्रोग्राम भी कराते हैं। तो इनसे भी हमको अपने प्रश्नों के सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे। और साथ साथ में आदरणीय हरीश भाई जी को भी निवेदन करती हूँ कि मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। तो हमारे समक्ष दो प्रकार की हस्तियां हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया है, दूसरों की लाइफ को सुधार रहे हैं, कईयों के जीवन सुधार कर उनको एक विकास के पथ पर उन्होंने आगे बढ़ाया है। और हरीश भाई जी जो आप ही की तरह एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं और परिवार को भी संभाल रहे हैं, समाज में भी जी रहे, कैसे अपने लाइफ को बैलेंस से जी रहे हैं, और आपके कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको वो अपने प्रैक्टिकल अनुभव के थ्रू ही हमारे समक्ष जवाब रखेंगे। तो हम सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहले पद्मा दीदी, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न आया है कि जैसे हम दो दिन से सीख लिया कि मैं कौन हूँ, परमात्मा के बारे में भी जान लिया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मेडिटेशन में हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कि मुझे वो पावर हासिल करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जो थॉट्स है वो निगेटिव चल रहे है, ऐसे डरावने विचार भी बीच बीच में आ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए?
ओम शांति। बहुत सुंदर बात है, वेरी प्रैक्टिकल, कि क्योंकि सारा ही बेस है थॉट्स, हमारी लाइफ का भी बेस थॉट्स है, और थॉट्स दोनों ही प्रकार के चलते हैं। अभी जैसे कहते हैं ना कि हमारे ह्यूमन माइंड में दे आर टू बुल्स फाइटिंग एवरी डे इन ह्यूमन माइंड, ईच पर्सन, सो वन इज नेगेटिविटी, अदर इज पॉजिटिविटी, सो विच वन विल विन, कौन सा जीतेगा? दो दो फाइट कर रहे हैं, दो बुल हैं, कौन सा जीतेगा? जिसको हम ज्यादा खाना खिलाएंगे वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो जीतेगा। तो जो थॉट्स आते हैं उसको रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका है, इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू स्टॉप समथिंग, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉप यूजिंग। उन थॉट्स को कोई भी सिचुएशन में, कोई भी बात में यूज करना बंद कर दें। तो मेडिटेशन में इम्प्रूव करने के लिए हम समझते हैं कि इसमें पहली चीज है प्रैक्टिस। थोड़ा थोड़ा भी हम रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे, बीच बीच में छोटे छोटे स्लॉट करें प्रैक्टिस के, ऐसे नहीं सोचे पहले दिन से हम एक घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, छोटे छोटे स्लॉट बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा है कि थोड़ा हम डेटा अपने माइंड को ऐसा दें, कोई ऐसी पॉजिटिव स्टडी करें। इसलिए ब्रह्म कुमारी में ये दो काम हम रोज करते हैं, रोज थोड़ा सा स्टडी करते हैं, डिस्कोर्सेस जिसे मुरली कहते हैं, और रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दो चीज चलती रहेगी तो नेचुरल हमारे अंदर के थॉट प्रोसेस, उसका एनवायरमेंट माइंड का चेंज होगा और मेडिटेशन हमारा अच्छा होने लगेगा।
दीदी, कई बार ऐसे होता है कि जैसे प्रश्न भी आया है कि हमने कहा कि मॉर्निंग अमृत वेला हमको करना जरूरी है, लेकिन कई बार हमारी शिफ्ट नाइट में है, तो शिफ्ट वाइज हम वो अमृत वेला नहीं कर पा रहे, तो क्या करें फिर?
नाइट शिफ्ट वालों को तो बहुत आराम होगा, मैं समझती हूँ कि क्योंकि ये मेडिटेशन जो है अगर हम रोज प्रैक्टिस करते हैं तो इसका एक और एस्पेक्ट है कर्म योगा, राजयोगा एज कर्म योगा। तो अगर हम फिजिकल लेवल पे ज्यादा एक्टिंग कर रहे हैं, मेंटली कम यूज कर रहे हैं माइंड को, तो हम कर्म करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, और जब नाइट शिफ्ट है तो रेस्ट करने के बाद कर लीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर।
इसी में ही राधिका बहन आपसे पूछना चाहेंगे कि मेडिटेशन में कई बार मन विचलित हो जाता है, लेकिन मेन जोर इस पे है कि मुझे परमात्मा को महसूस करना है, तो कैसे वो महसूस करे? क्योंकि थॉट्स हम क्लियर कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये महसूस करना है कि परमात्मा हर पल मेरे साथ है। जैसे आज शिवानी बहन जो हम सुन रहे हैं कि उसको अपना साथी बना लो, आज परमात्मा के बारे में भी जान लिया, लेकिन वो महसूस कैसे करे?
जैसे हम देखते हैं कि कई बार जैसे कोर्स कराते समय कोई कोई पूछते हैं कि भगवान को कैसे याद करे, कि ऐसा हो कि हम कहते हैं कि वो लैंड ऑफ साइलेंस में है, कि तो बहुत बुद्धि को यूज करते हैं, माना जैसा लॉजिकल हेड को यूज करते हैं, तो क्या होता है और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। संबंध रखेंगे, इट्स अ रिलेशनशिप, सो इज योर फादर, इज योर मदर, इज योर टीचर, इज योर गुरु, इज योर फ्रेंड। तो जैसे संबंध से शुरुआत करते हैं तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, लाइक यू जस्ट सिटिंग हियर, इफ आई वे टू आस्क यू कैन यू रिमेम्बर योर वेरी क्लोज रिलेटिव, योर मदर और योर फादर, और कोई भी आपके यू नो बच्चा भी होगा, तो उनको आप अपने घर में खड़े हुए आप देख सकते हैं अभी, यू कैन इमीडिएटली विजुअलाइज इट इन अ सेकेंड, एंड यू वुड ऑल्सो गेट दैट फीलिंग, ओ इज माई चाइल्ड, ओ इज माई फादर, इज माई मदर। सो इट इज वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड। इन द सेम वे हम जब परमात्मा को याद करते हैं, संबंध के आधार से याद करेंगे, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, उसको इतनी कॉन्सेंट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने मदर फादर से कैसे बात करते हैं, इफ यू वी हैव दिस होल कॉन्सेप्ट अबाउट हाउ गॉड इज लाइक, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट, वो कॉन्सेप्ट बुद्धि में भरा हुआ है। इट इज नॉट सो, इट्स वेरी सिंपल, एंड दैट्स वाई it's called Rajyoga, it's easy Rajyoga, it's a very simple one, very easy. If you want to make it easy, it's very easy. But you have to have the relationship with God.
धन्यवाद। हरीश भाई जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि बिजनेस व्यापार करते समय कई बार क्लाइंट हमसे उधारी लेकर जाते हैं, तो आगे मुझे सप्लाई को देने के लिए मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ?
ओम शांति। आई थिंक आप सबकी हंसी उसका उत्तर दे रही है। देखो कितनी अच्छी हंसी है। फंडामेंटली हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमको बिजनेस को समझना है। मेरे पास मेरी कैपिटल है तो मैं बिजनेस करूं, मेरे पास मेरी कैपिटल नहीं है तो मैं अच्छे से जॉब करूं, कमाऊं, मेरी कैपिटल जमा करूं और फिर वो कैपिटल को लेके मैं सर्कुलेट करूं। कैसे करूं? मैं वो कैपिटल लेके मैं सप्लायर को पैसे दूं, इससे जो मुझे माल मिलता है वो मैं मेरे कस्टमर को दूं और फिर जो कस्टमर से पैसा आएगा वो सर्कुलेट होते रहेगा। अभी डिफिकल्टी कहाँ आती है? प्रैक्टिकल में डिफिकल्टी आती है कि मैं मेरी कैपिटल से ज्यादा बिजनेस कर रहा हूं और वहीं मैं धोखा खा रहा हूं। मैं बैंक से पैसा लेता हूं, बैंक को रिटर्न नहीं करता हूं, बैंक मेरे पीछे लग जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल की बात हुई और उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप सभी लोग देख रहे हैं कि रुइया जो है एसआर के मालिक थे 52,000 करोड़। आई हैव वर्क्ड वेरी क्लोजली विथ मिस्टर रुइया और उनके सभी प्लांट सभी प्रोजेक्ट के लिए, और उनकी जो नीति रीति थी, खीसे में 4 करोड़ है लेकिन बिजनेस लगाते थे 12 करोड़ में, और जैसे ही वो 12 करोड़ के पैसे बैंक से या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आए उसने अपना 20% निकाल लिया, प्रोजेक्ट मैनेजर को 10 करोड़ दे दिया कि आप इसमें करो, शॉर्टेज हमेशा रहेगी, वो वेंडर्स को पैसा नहीं देते थे। ये तो प्रैक्टिकल की बात हो गई, लेकिन आध्यात्मिकता में आता है स्पिरिचुअल, इसका आंसर ये है कि अगर आप किसी के पास से आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आपने उसका काम किया है वो आपको दे नहीं रहा या डिले कर रहा है, तो जैसे सूरज भाई ने बताया वो आपका पैसा नहीं था, या अगर आज आप सप्लायर को पैसा नहीं दे रहे, आप आपके कर्मों का हिसाब बना रहे, आपने उसको नहीं दिया, कल आपका कोई पैसा नहीं देगा। कमिंग बैक टू ओरिजिनल, ऑनेस्टली एथिकली वैल्यू बेस्ड आपकी साइकिल उसे एस्टैब्लिश करो। अगर वो साइकिल एस्टैब्लिश नहीं है, कहीं ना कहीं आगे जाके हम उसमें विशेष सर्कल में फंसने वाले हैं। और उसका उदाहरण आज एक नहीं 21 है। भूषण स्टील के एमडी आज जेल में है, एसआर वाला पूरा बिक गया, उनकी रिफाइनरी बिक गई, उनका स्टील प्लांट बिक गया, जेपी वाले पूरा का पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेच दिया। क्या था? उनकी ये साइकिल सही नहीं थी, ऑनेस्ट नहीं थी, एथिकल नहीं थी, वैल्यू बेस्ड नहीं थी। तो उसे वैल्यू बेस्ड में, एथिकल में और ऑनेस्टी से चलाइए। और जो है जितना है, ग्रीड शुड नॉट बी नेवर नियर बाय यू। अगर आप में लोभ है और मोह है, ये दोनों चीज आपको नीचे ले आएगी और वही फिर सर्कल चालू हो जाएगा। ओम शांति।
इसमें मैं थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऐड कर सकती हूँ। जैसे आप तो बिजनेस बता रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली यू नो अवर थॉट्स ऑल्सो वर्क। तो कोई हमें नहीं दे रहा है तो हमारे थॉट्स कैसे चलते हैं उसके बारे में? नेगेटिव ना, अच्छे अच्छे नेगेटिव चलते हैं, स्ट्रांग। यस, वो सारे वो थॉट्स भी वहां जा रहे हैं। एक तो हमारा कार्मिक अकाउंट काम कर रहा है, या जो भी काम कर रहा है, मेरी पर्सनालिटी और उस आत्मा की पर्सनालिटी, उसके संस्कार या उसकी सिचुएशंस, मेरी सिचुएशंस। लेकिन इसमें हम इसको इम्प्रूव करने के लिए, अपने रिलेशंस को और अपनी मन की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए, एटलीस्ट एज अ सोल लेवल या स्पिरिचुअल लेवल, एज अ ह्यूमन लेवल, हम उसके लिए कुछ अच्छे थॉट्स भेज सकते हैं। पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा? अभी होगा। यस, कुछ अच्छे थॉट्स भेजे कि ठीक है, अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करें। और ऐसा भेजे, जब मैं सोचती हूँ ना, वो खराब है, उसने जानबूझ के किया है, धोखा दे रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी वहां जा रही है। और नेगेटिव एनर्जी जाके क्या काम करेगी, क्या रिजल्ट देगी? तो थोड़ी भी पॉजिटिव एनर्जी भेजूंगी, हो सकता है वो रिटर्न फ्लो शुरू हो जाए। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो वी कैन यूज आवर माइंड, पॉजिटिव माइंड।
थैंक यू। थैंक यू राधिका दीदी, आपके लिए कि जब फैमिली में पेरेंट्स बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो तुमको भी बिजनेस करना है, क्योंकि तुमको पीढ़ी आगे चलाना है, तो क्या ये राइट है कि मैं अलाउ करूं या उनके रीति से उनको आगे बढ़ने दूं?
तो वैसे तो चॉइस तो देनी ही है, परंतु बच्चों की कैपेसिटी भी देखनी होगी। कई बार हम देखते हैं कि बिजनेस फैमिलीज में उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है और उनको फोर्स करते हैं। जैसे मुझे याद है, हैदराबाद में एक लड़का आया, उन्होंने कहा मुझे अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए और वहीं सेटल हो जाऊंगा, और है ही एक ही लड़का और इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हमने पूछा, व्हाई इज इट दैट यू वांट टू गो, आप एक ही लड़के हो, आपको ही संभालना है। तो कहने लगा कि आई हैव मोर अपॉर्चुनिटीज इन अमेरिका। तो हमने कहा यहां इतना है, आप एक्सपैंड कर सकते हो। उन्होंने एक ही बात बोला, पापा को नहीं बताना, परंतु मैं कुछ भी करता हूं कंपनी में, कुछ भी करता हूं, वो कमेंट जरूर करते हैं, तुमको तो ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं ना, कई बार ऐसा है कि वो करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि दे हैव सो मच एक्सपेक्टेशन कि उनको 30 साल का उम्र का जो एक्सपीरियंस है वो बच्चे में अभी आ जाए, वो नहीं हो सकता है। सो इफ यू आर पेशेंट इनफ एंड गिव न्यू अपॉर्चुनिटीज, उनके न्यू आइडियाज को आप इनकरेज करेंगे। कि जैसे एक भाई है, वो अमेरिका से वो नहीं आना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा तुमको कुछ नया करना है, डिजाइनर वेयर का कुछ करना है, तो आके करो, उनका क्लोथ्स का बिजनेस है। तो वो आके उन्होंने नया एक बिजनेस शुरू किया, मतलब क्लोथ्स का ही, पर वेडिंग वेयर का शुरू किया। पर फादर ने कहा भले करो, तो ही गॉट एनकरेज्ड। आप बोलेंगे एक ही दुकान में बैठो, जैसे हम बैठे हैं इतने साल से, तुम भी वही करो, नहीं करेंगे, दे कैन नॉट डू इट। सो यू हैव टू गिव दैट ऑप्शन एंड ऑल्सो एनकरेज देम टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू, बट दे शुड नॉट फील दैट यू आर फोर्सिंग देम।
दीदी, उसके आगे ये भी होता है कि जैसे अलाउ तो कर लिया या उसके चॉइस अनुसार उसको करने भी दिया, लेकिन आगे पड़ाव ऐसा आता है बच्चे के सामने कि पेरेंट्स का साथ देवे या अपने वाइफ का साथ देवे, मतलब लव दोनों से है, मदर फादर से भी है, तो बीच में मैं कश्मकश हो रहा हूं, तो ऐसे समय मुझे क्या करना चाहिए?
अभी देखिए, इट इज कहते हैं ना, यू शुड हैव युक्ति। युक्ति इज अबाउट बीइंग टैक्टफुल। Both of them, parents are very important and the wife is also important. But I'm not saying you should be, you know, I remember someone telling me that aisa aisa hua, to maine unko kaha ki jab se main Brahma Kumaris mein aayi hu, main jhoot bolna seekh li. To unne kaha aisa kyun? Maine kaha bahut jhoot bolti hu. तो कैसे झूठ बोलते हो? मैंने कहा जैसे हस्बैंड वाइफ आते हैं, लड़ते हैं मेरे सामने, मैं कहती हूँ देखो हस्बैंड सुबह आओ, वाइफ शाम को आना, हा? या वॉट एवर टाइम दे वॉन्ट टू कम. फिर उनको जब वो हस्बैंड चलो शाम को आते हैं ना, मैं जरूर झूठ बोलती हूँ, कहती हूँ सुबह आपके वाइफ आए थे ना, तो वो कह रही थी क्या बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बहुत अच्छे गुण है. वो है तो, पर वो वाइफ ने कुछ भी नहीं सुनाया ऐसे, पर मैं सुना देती हूँ उसमें क्या है. तो हस्बैंड खुश हो जाता है और कहता है एक्चुअली बेन जी हमारे दोनों में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा ना मेरे प्रति उनको रेस्पेक्ट है, बहुत है. और एक हफ्ते के बाद वाइफ फोन करेंगी और कहेंगी इनमें आपके साथ बैठने के बाद ना इनमें बहुत चेंज आ गया है. सो इट इज अबाउट बींग टैक्टफुल, नॉट बींग कनिंग बट टैक्टफुल हाउ टू मैनेज. If whatever your feelings are you putting across to the wife and telling what the parents feel about her, और फिर parents को बता रहे wife की feeling ऐसी है, तो आपको bridge बनना है Kenji, और वो जैसे you should not become like scissors, so then you can manage then. Yeah.
बहुत ही सुंदर, मतलब युक्ति युक्त हमको हर एक के साथ चलना है. हरीश भाई आपके लिए है कि आप भी एक पावर लिंकर कंपनी चला रहे हैं, तो वैसे ही कई बार हमारे कारोबार में जो हमारे साथ कर्मचारी हैं उनके साथ हम प्यार से तो चल रहे हैं, फिर भी ये लोग गलत काम किए ही जा रहे हैं. जैसे किसी किसी को मोबाइल का एडिक्शन होता है तो हम कई बार कहते हैं भाई तुम काम पे ध्यान दो, या कई गलतियां होती रहती है, तो क्या हम इनके साथ रहे चले या इनको निकाल देवे, या कैसे इनके साथ हम अपने आप को बैलेंस रख के चल सकते हैं?
प्रैक्टिकल में आए तो निकाल देने से आपका कोई सोल्यूशन नहीं बनता, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट जो आए वो उससे बेहतर होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है. दूसरा है कि वो आत्मा जो कर रही है वो अपने कर्मों के हिसाब से, अपने संस्कार के हिसाब से कर रही है. और तीसरी बात ये समझे कि वो आत्मा आपके पास आई क्यों. पहले तो वो आई बिकॉज आपका उसके साथ में कोई ना कोई कर्म बंधन बाकी था, और जिस दिन उसका वो कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा वो अपने आप चली जाएंगी. एंड चौथा, हरेक आत्मा की अपनी अपनी शक्ति होती है. आप सबको अपने जैसा या सबको बिल गेट्स जैसा या सबको अब्राहम लिंकन जैसा नहीं समझ सकते. यू हैव टू एक्सेप्ट देम एज दे आर, एज दे विल, एंड वंस यू एक्सेप्ट देम ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव होते जाएंगे, और जो चीज आपके रूल्स रेगुलेशन से नहीं बनती वही चीज स्नेह और प्यार से बनती है. और स्नेह और प्यार क्या है? अगर आप एक दीवार खड़ी कर दो, ईंटें लगा दो और एक धक्का मारो वो गिर जाए, लेकिन वही ईंट की दीवार को अगर आप सीमेंट से, प्लास्टर से उसको करो वो गिरेगी नहीं. तो सीमेंट प्लास्टर क्या है? वही स्नेह और प्यार है. उसको साथ में रखना है, उसे समझाना है, एक्सपीरियंस है कि वो जरूर जरूर सुधर जाएगा. और ये सब का एक सॉल्यूशन है कि जैसे मैंने पहले दिन बताया था, आपके सत्र अमृत वेला का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका राजयोग की स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार से, जैसे पहले वाला प्रश्न था, सामने वाला आपको पैसा नहीं दे रहा, यहां कोई आपको सहयोग नहीं दे रहा, सभी को सुबह के समय में बाप दादा के समक्ष आप उसको इमर्ज करो, और उसको आप प्यार के, स्नेह के, शांति के वाइब्रेशंस दो, और आप देखो जरूर उसके अंदर में परिवर्तन आएगा.
हरीश भाई जी, इसी में ही जैसे आप एक परिवार में हो तो बच्चों को कई ऐसी आदतें होती हैं, तो कैसे उनकी वो आदतों को छुड़ाएं, कैसे हम उनको आध्यात्मिकता की ओर लेके जाएं? और जो पहला क्वेश्चन था कि जैसे हम प्यार से समझा रहे, स्नेह से चलाओ, प्यार से चलाओ, ये बातें बोलने तक हमने कर लिया, फिर भी वहां जितना हम बताते जा रहे गलतियां होती जा रही, गुस्सा और बढ़ता जा रहा है. हो सकता है आपने भी आपकी लाइफ में अपने गुस्से को कैसे परिवर्तन किया, क्या आप इसके ऊपर बता सकते हैं?
तो बच्चों की जहां तक आदत का सवाल है, पहले तो जैसे आपके संस्कार है वैसे उसके संस्कार है, तो आपके संस्कारों से तो उसकी आदतें बिगड़ी नहीं है, क्योंकि आप कहते हो कि उसकी आदत बिगड़ी है हमारी नहीं बिगड़ी, तो उसकी आदत बिगड़ी कहां से। जैसे परमात्मा ज्ञान में कहता है संग तारे कुसंग बोरे, सो सबसे पहली बात है कि वो आदतें उसको उसके पास से कहां से आई और उसका ये सहयोग और संग उसे छुड़ाना है, तो उसकी आदतें बदलती जाएंगी। और फिर से मैं एक बार कहूंगा, जोर जबरदस्ती रूल्स रेगुलेशन से कोई बात बनती नहीं है। आप अगर उसे फ्रीडम दे दो, उसे समझाओ, युक्ति युक्त काम दो, वो जरूर उसकी आदतें बदलेगी। उसका क्या नुकसान होगा, कैसे होगा, कैसे उसके प्रगति में बाधा डालेगी, उसके प्यार से समझाओ, वो जरूर चेंज करेगा। रही गुस्से की बात, गुस्सा अगर शांत करना हो तो मेरे हिसाब से और कोई ही रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, राजयोग की साधना करो, रोज मुरली पढ़ो, और मुरली में जो शिक्षाएं मिलती है उसे आप उसका स्वरूप में लाओ, यानी कि आप पालन करो। मैंने सही किया 2003-04 में, शायद जैसे निजार भाई ने भी कहा, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था, इनटॉलरेंट था, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप में समझता था कि मैं परफेक्ट हूं और मैं जैसा हूं वैसे सबको बनना है, मैं जैसे समय सर करता हूं सबको वैसे करना है, जैसे मैं लिखता हूं वैसे सबको लिखना है। लेकिन जब से ज्ञान मिला कि सभी आत्माएं एक सर की नहीं होती, जैसे उदाहरण है कि आप ड्रामा सिनेमा देखने जाते हो, अगर मैं ड्रामा में जितने भी पात्र है वो सभी पात्र को एक सर का ड्रेस एक सरी का डायलॉग्स दे दूं, आपको वो ड्रामा में मजा आएगा, नहीं आएगा। तो ये दुनिया भी वैसी है कि हर एक आत्मा अलग अलग प्रकार से है, एक आत्मा न मिले दूसरे से, एक फीचर न मिले दूसरे से, कोई डुप्लीकेशन नहीं है। तो उसे जैसे जैसे ये ज्ञान मुरली के ज्ञान से सीखते गए, उसको अपनाते गए, समझते गए, और ये 15 साल की तपस्या से अब मैं आप सभी को चैलेंज भी कर सकता हूं, गुस्से की बात तो दूर रहेगी, अब मुझे इरिटेट करके भी दिखा सकते हो तो मैं आपको, आप जो कहेंगे वो इनाम भी दे सकता हूं।
बहुत खूब, कि प्रैक्टिकल हमने सुना और प्रैक्टिकल हम देखे भी कि कैसे हरीश भाई के अंदर कहां कहां से धीरे धीरे परिवर्तन, और आज उन्होंने कहा कि राइट बात है कि कैसे उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन, कि गुस्से को कैसे धीरे धीरे निकाल ही दिया। पद्मा दीदी, आपके लिए प्रश्न है कि परमात्मा ने ये जो सृष्टि रचाई है, पहले तो रची क्यों, दूसरा ये 84 लाख जन्म क्या है, और इसमें जैसे मानव के अंदर आत्मा है तो क्या पशु पक्षियों में भी आत्मा है?
ओके, आपको लगता है जैसे वो नॉटी बच्चे होते हैं ना, पूछते हैं आजकल पेरेंट्स को, कहते आपने हमें जन्म ही क्यों दिया। सो सिमिलरली हम भी भगवान से कहते हैं आपने दुनिया बनाई क्यों, यू नो, ये कब कहते हैं हम, दुनिया तो बहुत सुंदर बनाई, लेकिन हम तब कहते हैं जब हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे या सच में उसके साथ में चल नहीं पा रहे हैं। और बनाई इसलिए, ऐसा नहीं है कि उसने बैठकर के इसको बनाया और कहा आप ये बनेंगे, आप ये बनेंगे, आप ये बनेंगे। एक चीज है जो मुझे भी बचपन में समझ में नहीं आती थी, और समझती थी ये कैसे चलता है, एक शब्द जो हम आध्यात्मिकता में यूज करते हैं, अनादि और अविनाशी, Never begins and never ends। तो ये सृष्टि सदा चलती है, चली है और चलती रहेगी। और हम सब कौन हैं? हम तो एक्टर्स हैं ना। अब एक्टर चाहे कि मैं एक्टिंग बंद कर दूं, हम चाहे हम काम बंद करते, आजकल कई लोग चाहते हैं हमको कुछ नहीं करना है, वो तो हमारी डिप्रेशन स्टेज है, बहुत थक गए हैं, मन से बहुत उदास हो गए हैं, तब ऐसा फील करते हैं। लेकिन ये सृष्टि बनी है कुछ अच्छा करने के लिए और इम्प्रूव होने के लिए। और हमने जब समझा ब्रह्म कुमारी, इसमें आके एक बात बहुत अच्छी तरह समझी कि ये सृष्टि बनी और हम क्यों हैं, कुछ देने के लिए है. आई एम हियर टू गिव. अगर इस एक शब्द को पकड़ लेंगे तो हमें बहुत सुंदर अनुभव होगा, लगेगा कि भगवान थैंक यू आपने ये दुनिया बनाई. और 84 लाख की जहां तक बात है, ये शब्द आया है हमारे भक्ति के कॉन्सेप्ट से. उसमें लिखा है लख 84. लख के दो मीनिंग है, लख मीन्स देखना और लख मीन्स लाख. तो ये लाख या हजार, ये जो नंबर वाला जो उपमा है, वो जब देनी होती है तो नंबर के बाद में लगाते हैं. 500 नहीं लगाते. उसमें लख 84 लिखा है, जिसका मीनिंग है देख 84. ये 84 का चक्र है जो हमने यहाँ पर सीखते हैं कि जो सृष्टि का पूरा एक साइकिल है 5000 वर्ष का, उसमें सत्ययुग, त्रेता युग, गोल्डन एज, सिल्वर एज, और उसके बाद द्वापर युग और कलयुग, ये सब मिलाकर के मैक्सिमम 84 बर्थ है, मिनिमम 1 बर्थ है. और ये सब ड्रामा से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं. समझ लीजिए, ड्रामा है और हमारे अलग अलग रोल हैं. तो इस प्रकार से हम आत्माएं इसमें अपने कर्म के हिसाब से रोल करते हैं. जैसे एक्टर है, एक फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की तो नई फिल्म उसे कैसी मिलेगी? अच्छी मिलेगी, इम्प्रूव होगा. ऐसे एक जीवन में हमने अच्छे कर्म की, अच्छी तरह से पार्ट प्ले किया तो हमारा भविष्य उससे अच्छा हो जाता है. और इसी का ही दूसरा साइड भी है. तो ऐसे ये सृष्टि चलती है. और तीसरी बात आप एक और पूछ रहे थे, इसमें तीसरा प्रश्न था, इसमें
पशु पक्षी योनियों में आत्मा है या नहीं?
जरूर है. और हम सभी आत्माएं मनुष्य आत्माएं हैं जो हाईएस्ट लेवल है. कहते ना, ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल. तो हम सबसे हाईएस्ट लेवल की आत्माएं हैं जो ह्यूमन बॉडी में आती हैं. अब ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे प्रकृति है, उसमें वैरायटी फ्रूट्स होते हैं, वैरायटी वेजिटेबल्स होती है. अब पपैया है, बनाना है, मैंगो है, हर एक का अपना अपना सीड होता है. तो पपैया का बीज डालेंगे तो कभी कभी मैंगो भी लग जाता है ना? नहीं लगता है. वो मैंगो जैसा स्वीट हो सकता है, स्वीट हो सकता है पपैया, लेकिन होगा तो पपैया ही. ऐसा ही है ना? तो ऐसे ही हम जो आत्माएं हैं, ह्यूमन सोल्स हैं. तो ह्यूमन सोल लाइक अ सीड, सोल इज लाइक अ सीड. तो वो हम हैं एनिमल्स की आत्माएं, अपनी अपनी हर प्रकार की आत्माएं हैं. और प्रकृति की ये ब्यूटी है, सृष्टि की ब्यूटी है, इस कुदरत का ये बहुत सुंदर सौंदर्य है. और ये वैरायटी क्रीचर्स बने हैं और हम सब मिलकर के इस सृष्टि में सुंदर पार्ट बजा रहे हैं.
हाँ, बहुत सुंदर. दीदी आपने बताया 84 जन्म हमारे होते हैं. तो कहा, कहते हैं कि आत्माओं की लेन देन पूरी हुई, पुनर्जन्म मुझे लेना, यहाँ का कार्मिक अकाउंट पूरा किया, पुनर्जन्म लेना. प्रश्न पूछा है कि जैसे शिवानी दीदी ने बताया था कि किसी एक को छोड़ना है, मेरा पार्ट यहाँ ही पूरा हुआ लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्या चलेगी दुनिया ऐसे ही? क्या होगा आगे का लेन देन?
हो सकता है कि आत्मा के साथ मेरा अभी भी पार्ट बाकी है लेकिन रोल चेंज होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है. तो मुझे उसको अंडरस्टैंड करना है. और अगर मैं नहीं छोड़ना चाह रही हूँ तो जरूर वो आत्मा वापस से मुझे फिर से मिलेंगी और अलग रोल में मैं उसके साथ पार्ट प्ले कर सकती हूँ.
थैंक यू. राधिका दीदी, अल्कोहल या चेन स्मोकिंग नहीं छूट रहा है, क्या मेडिटेशन से छूट सकता है, मैं इनसे मुक्त हो सकती हूँ?
एक भाई है, उन्होंने पहली बारी जो सेंटर पर आए, उनकी बेटी लेकर आए थे. उन्होंने कहा कि एक कंडीशन पे कोर्स करेंगे. उन्होंने कहा कौन सा कंडीशन है? कि आप हमको सिगरेट स्मोकिंग बंद करने के लिए नहीं कहो और अल्कोहल पीने के लिए बंद नहीं कहो तो फिर हम आएंगे. मैंने कहा जरूर आप पियो, जो भी करो, कोर्स करो. तो आके कोर्स किए, करने के बस 3-4 महीने में उनका छूट गया. तो हमने पूछा कि कैसे छूट गया, आपको तो छोड़ना नहीं था ना? तो उन्होंने कहा हमने कहा छोड़ा, सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट है ना, वो हमें छोड़ दी. तो मेडिटेशन से आसान होता है, मेहनत नहीं. ओम शांति.
दीदी आपके लिए ही है कि विल पावर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और मैं हर व्यक्ति के साथ अच्छा तो रहती हूँ, परंतु लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, तो मुझे क्या करना। कई बार उसका मिसयूज भी हो जाता है, कहते हैं ना कि सामने वाला गुस्सा करे कुछ भी करे, लेकिन मुझे नहीं करना है, कई बार उसका मिसयूज करते हैं।
कौन सा मिसयूज होता है उनके व्यक्ति
का? मतलब उसका फायदा उठाते हैं।
व्हेन शी इज नाइस,
या
पहले क्या पता है आपने
विल पावर कैसे बढ़ाना है?
विल पावर और डिटर्मिनेशन बढ़ता है एकाग्रता से ही। द मोर यू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सोचेंगे मुझे ये हासिल करना है, वो जितने बारी आप स्मृति दिलाएंगे उतना हो जाएगा। एक बारी सोच लिया और आप छोड़ दे, विल पावर इज नथिंग बट हैविंग अ वेरी स्ट्रांग प्रोमिस टू योर सेल्फ, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए। तो बार बार आप रिमाइंड करते रहेंगे कि मेरे को करना ही है, बनना ही है, जितना आप रिमाइंड करेंगे उतना वो इजीली लाइफ में आता रहेगा। विल पावर कैन नॉट जस्ट ग्रो ऑन इट्स ओन, एक कॉन्शियस एफर्ट करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है, हम अच्छे हैं पर दूसरे अच्छे नहीं। तो मैं रिमेम्बर किसी ने कहा कि मैं बहुत पॉजिटिव हूं पर मेरे आगे पीछे जो भी है ना सब नेगेटिव है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा आप पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिविटी क्यों दिखाई पड़ रही है? सिंपल है ना, आप अच्छे हो तो अच्छे रहो ना। तो द थिंग इज, अच्छाई भी कोई भी चीज की एक्सट्रीमिटी एक वीकनेस है। जैसे आप डिसिप्लिन्ड हो पर टू मच डिसिप्लिन क्या होता है? स्टबर्न कहते हैं ना, ये चीज यही रखना है, कोई ऐसे हटाओ नहीं, तो ये क्या हो गया, ये तो जिद हो गया ना। तो कोई भी गुण हो, कुछ भी अच्छाई हो, उसको एक्सट्रीमिटी में नहीं ले आना है, हमको बीच में रखना है। और बीच में रखने के लिए अगेन यू नीड लॉट ऑफ यू नो व्हाट यू कॉल एज कॉन्सेंट्रेशन, बैलेंस। तो ये जो है कि हम कहां, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत टू मच में जा रहे हैं। एंड आई एम गुड टू द एक्सटेंट दैट इट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि दूसरों को अच्छा लग रहा है पर मुझे खराब लग रहा है, ऐसा नहीं। Somebody was telling me, I was trying to be good to everyone the whole day, but the end of the day, I am not pleased with myself. So I have to be centered.
दीदी, इसी में आपको पूछा गया है कि मैंने भी अपने जीवन में काफी गलतियां की हैं, अब मैं उसको कैसे करूं?
अभी क्या करूं?
गलतियां हो गई हैं अब मेरे, हाँ। अब तो सुधार रहे हैं, हाँ। लेकिन अब जो पास्ट का हुआ है उसको क्या करें?
पास्ट इज इम्प्यूरिटी, अभी खत्म हो तो हो गया, पास्ट इज पास्ट। और पास्ट को खत्म करने के लिए ये जरूर सोचना है कि आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। अब अंदर से कहां तो भी कॉन्शियसनेस में होगा कि ये कंटिन्यूएशन है, पास्ट का कंटिन्यूएशन है, तो फिर देयर इज लॉट ऑफ गिल्ट एंड रिसेंटमेंट एंड यू नो वो सब होगा। परंतु यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नाउ, इट इज टोटली न्यू चैप्टर। तो ये न्यू चैप्टर में सब कुछ न्यू होगा। अब पास्ट है उसमें सीखना जरूर है, ऐसा नहीं कि हम कट ऑफ होएंगे, तो जो भी हुआ है मिस्टेक्स हम उससे सीख लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो द थिंग इज फॉर दैट यू नीड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। हम सुनाने से तो आसान लगता परंतु यू नीड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और जितना आप अपने आप के अंदर की जो अच्छाई है वो बार बार सामने लाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। और जो कुछ भी मिस्टेक हुआ उससे हम सीखे और हम आगे बढ़ रहे हैं। बट यू हैव टू टेल सम गुड थिंग्स टू योर सेल्फ, यू शुड हैव वेरी गुड कॉन्वर्सेशंस विथ योर सेल्फ। बार बार पास्ट को रिमाइंड करना मन अपने आप को और नीचा करना, सो यू कैन नॉट जस्ट इम्प्रूव देन।
थैंक यू हरीश भाई जी आपके लिए, कि मेरा काम बिल्डिंग का है, काफी सारे प्लॉट बन गए हैं लेकिन बिक्री नहीं हो रहे हैं, काफी लॉस में जा रहा हूं, तब मुझे क्या करना चाहिए?
इसके आंसर भी दो है, एक लौकिक है और एक अलौकिक है। पहले लौकिक यानी कि डे टू डे लाइफ में हमको समझना जरूरी है, आपका माल बिक नहीं रहा है, बट व्हाई डोंट यू लुक एट द ओवरऑल इकोनॉमी। वो एक जो बिजनेस था कंस्ट्रक्शन का पूरे भारतवर्ष में, आपका अकेले का नहीं, पूरे भारतवर्ष में वो ठप होके पड़ा है और हमारी बहन सीताराम जी ने, निर्मला सीताराम ने अभी अभी 25,000 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं उसके उगारने के लिए। लेकिन वो क्यों ठप पड़ा, वो कभी सोचा आपने? वो बिजनेस के अंदर में 50% से ज्यादा काला पैसा था, यानी कैश का पैसा था। मतलब गलत तरीके से कोई चीज अगर चलती है, नेगेटिविटी से वो अगर चलती है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, उसका ये उदाहरण है। आज आपका माल बिक नहीं रहा है, आप वो लाइन में है, मतलब कि आपने भी उसमें पार्ट लिया था और आज आपको उसका ये रिटर्न मिल रहा है। सो एक्सेप्ट इट। सबसे बड़ी बात बिजनेस में होती है कि फेलियर है, एक्सेप्ट इट, लर्न एंड चेंज योरसेल्फ, चेंज द लाइन। वो जो फेल हो रही है, अगर आप उसको फेलियर को पकड़ के ही रहेंगे, दिन भर दिन और फेल होते जाएंगे। कमिंग बैक टू द स्पिरिचुअलिटी अगेन, कि ये मेरे भी कोई कर्मों का हिसाब है, मेरे कोई पास्ट कर्मों का हिसाब किताब रह गया है कि वो बिक नहीं रहा है और मुझे आज उसका भुगतान करना पड़ता है। एंड तीसरा, जैसे पद्मा दीदी ने बताया था कि जो आपकी प्रॉपर्टीज है, आइदर कोई देखने आता है और फिर खरीदता नहीं, या वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को आप मनसा सेवा से, जैसे आप ज्ञान में आएंगे तो और एक उसका पहलू है कि मनसा सेवा करो, अपने मन से उसके पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते जाओ। एक दिन, एक वीक, एक महीना, 6 महीना, जरूर वो प्रॉपर्टी में जब कोई जाएगा उसे उसका पॉजिटिव वातावरण का अनुभव होगा और वो आपकी प्रॉपर्टी जरूर बिक जाएंगे, आपको जरूर उसमें फायदा होगा, ये रहेगा। ये जो मनसा सेवा का एक प्रयोग है, बहुत ही कारगर प्रयोग है। मैं कई बार बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाता हूं और जाने के पहले पता होता है या लोग बता देते हैं कि आप जिसको मिलने वाले हैं वो बहुत खड़ूस आदमी है, उससे डील करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत इगोइस्टिक है या बहुत गुस्से वाला होता है। शायद मैं पहले मिला हूं या नहीं मिला हूं, अगर नहीं मिला हूं तो उसको इमेजिन करके, इमर्ज करके, अमृत वेला नुमाशाम योग में बाबा के सामने उसे खड़ा कर देता हूं और जितने हो सके उतने उसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे देता हूं, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से जो मैंने सुना था उसके विपरीत मैं जाता हूं, रिजल्ट एकदम शांति से आ जाता है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती है और सफलता मिल जाती है। तो वंस अगेन कमिंग बैक कि ये ब्रह्म कुमारी का जो पूरा उद्देश्य है वो अपने स्वपरिवर्तन के लिए है, समाज परिवर्तन के लिए है और एक सुखमय संसार की स्थापना करने के लिए है। और ये नहीं है कि हम अगर बिजनेस में है, समय नहीं मिलता है तो ये समय क्यों गवाए। निजार भाई ने कहा ये भी लेन देन का हिसाब है, हम समय देते हैं लेकिन उसका फायदा भी बहुत बहुत और बहुत ही है, ये जरूर आपको उसका प्रयोग कर सकते हैं।
हरीश भाई जी, उसी में ही एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि आज जो मैं बिजनेसमैन हूं, जो मेरे पास कर्मों के आधार से मुझे आज सब कुछ मिला है, लेकिन नेक्स्ट बर्थ भी मेरा ऐसा ही वेल्दी हो, हेल्दी हो, तो मेरे एक्शन अभी क्या होने चाहिए?
आज भले आपका बिजनेस है, आप सुखी हो, आपके पास में बहुत धन है, और अगर नहीं भी है, एट एनी गिवन टाइम, कोई भी समय में आपके सभी कर्म, सभी विचार और सबके प्रति शुभकामना, शुभ भावना होनी जरूरी है, और उसी के हिसाब से आप अगले जन्म में, अगले कल्प में, टेक दिस दैट यू आर रिकॉर्डिंग योर पार्ट, और वही रिकॉर्ड प्ले करके आपको वापस सुननी पड़ेगी। यस, यू कैन ओवर राइट इट इफ यू हैव ए पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्शन, यू कैन ओवर राइट इट एंड डू इट गुड फॉर यू, आप अच्छा कर सकते हो। कभी ये नहीं सोचो, ये सोच भी जो है वो भी गलत है कि मेरा जन्म क्या होगा। आपका जन्म हमेशा अच्छा ही होगा अगर आप अच्छा कर रहे, अच्छा सोच रहे, अच्छी भावना रख रहे, आपके लिए, सबके लिए, संसार के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद राधिका दीदी। प्रश्न पूछा गया है, मैं किसी और आध्यात्मिक संस्था से प्रभावित हूँ, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको फॉलो करूँ।
अभी तो जैसे बुफे होता है ना, तो उसमें आपको जो पसंद है वो लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी, इफ यू आस्क मी, तो मैं कहूंगी कि मुझे मना रहना है, सबके साथ रहना है, सब कुछ करना है, कनेक्ट रहना है, और मुझे ऐसी शक्ति मिले जो लाइफ एफर्टलेस और इजी लगे, तो उसके लिए मुझे राजयोग मेडिटेशन चाहिए। तो आपको क्या चाहिए उस आधार से यू शुड पिक अप फ्रॉम द बुफे। अभी कई चीजें हैं जो डाइजेस्ट भी करना, आप खाएंगे पसंद है, परंतु आर यू एबल टू डाइजेस्ट इट, इज इट प्रैक्टिकल फॉर यू, कैन इट कम एंड ब्लेंड इन टू योर लाइफ। तो जैसे कोई कहते हैं कि चलो मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे यू नो आई जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट, परंतु अभी हमको पूछेंगे तो हम कहेंगे आई नीड स्ट्रेंथ टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड बेटर, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कनेक्ट, मुझे डिस्कनेक्ट होना ही नहीं है, कनेक्ट होना है, और कनेक्ट होना और अच्छी तरह कनेक्ट होना है। तो एंड इफ दैट इज माई एम एंड पर्पज, देन आई नीड टू मेडिटेट अकॉर्डिंग टू वॉट यूर हियरिंग हियर। पर दूसरे जो भी आप फॉलो कर रहे उसको आप डिसरेस्पेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, परंतु आप समझना कि वॉट ऑल यू कैन टेक एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट विद, पहले एक्सपेरिमेंट करना है और देखना है।
थैंक यू। पद्मा दीदी, पूछा गया है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन ये संस्था चलती कैसे है, संस्था का खर्चा कैसे हो रहा है, और हमको भी अगर इसमें मदद करना है तो किस रीति से कर सकते।
ब्रह्मा कुमारी जैसे हम आजकल बिजनेस में कहते हैं कि ये बिजनेस हमारी फैमिली है, यस, बिजनेस हाउस इज अ फैमिली, और परिवार कैसे चलता है, भारत का जो एंशियंट सिस्टम है परिवार का, तो उसमें क्या होता था, सब मिलकर के पूरा घर चलाते थे, कितने लोग एक साथ रहते थे, और हर एक अपने अपनी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करता है अपनी फैमिली में। तो वैसे ही ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल फैमिली है, एक डिवाइन फैमिली है, जिसमें हम सब अपनी इच्छा से कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमारे पास जो है वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, वॉलंटरली करते हैं, जब मुझे कुछ मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो फाउंडिंग फादर हैं ब्रह्मा बाबा, उन्होंने शुरू से ये सिस्टम बनाया है कि कोई भी प्रकार की किसी भी तरह की फीस नहीं है, क्योंकि परिवार है ना, एक पिता अपने बच्चों को पालना देता है, पढ़ाता है, सिखाता है, तो उसके कुछ चार्जेस नहीं होते। तो मेरे जीवन में पहले मैं लेती हूँ, और लेने के बाद ऑटोमेटिकली मैं इतना उसका बेनिफिट अनुभव करती हूँ हर प्रकार से, फाइनेंशियली, लौकिक रूप से और अलौकिक रूप से, दोनों ही रूप से मुझे बहुत फायदे होते हैं, और ऑटोमेटिकली मेरा मन उसमें इन्वॉल्व होने को दिल होता है। तो ब्रह्मा कुमारी ऐसे सबके कॉन्ट्रीब्यूशन से चलती है। हमारे हम बहनों ने अपना जीवन दिया, हमारे पास जीवन था, और समझ में आया कि ये इतना अच्छा कार्य है परमात्मा का, जिससे मैं भी अच्छी बनूंगी और मेरा ये दुनिया भी अच्छी बनेगी। तो सबसे बड़ा एसेट हमारे पास जीवन था, तो अपने जीवन से सेवा करते हैं। तो हमारे पास अपना तन है, हम सबके पास मन है, जो मन की बातें हो रही है कि मन से हम जैसे संकल्प करते हैं हम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मन है हमारा, जो धन है हमारा, समय है हमारे, संकल्प है, किसी भी प्रकार से आपको जो दिल से आता है वॉलंटरली हम करते हैं इसके लिए, और ऐसे ही ये कार्य चलता है। और इसमें कभी कभी हमको लगता है, जब स्पेशली जो बिजनेस पीपल होते हैं वो लोग सोचते बहुत एक्सपेंसिव होगा, आपका मेंटेनेंस बहुत होगा, जरूर मेंटेनेंस बहुत है, लेकिन हमारा सबके सहयोग से बहुत सुंदर चलता है। जैसे सेंटर्स होते हैं, अब इलेक्ट्रिक का काम है, फॉल्ट तो होता रहता है, मेंटेनेंस भी होता है, पर हमारी क्लास में आने वाले हम भाई बहनों में से कोई भाई होंगे या बहन होंगी जिनको पेंटिंग आता है, किसी को इलेक्ट्रिक वर्क आता है, किसी को कारपेंट्री वर्क आता है, तो मैं और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन मैं निकाल के अपना पूरी सेवा दे सकती हूँ, उस कार्य को कर सकती हूँ। तो कितना एक्सपेंसेस अगर हम हायर करते हैं, उसमें जो एक्सपेंसेस होता है और जो सेवा करते हैं उसमें एनर्जी भी है, गुड विशेस भी है, प्यार भी है और एक्सपेंसेस भी कम है। तो ऐसे ब्रह्म कुमारी में ये कार्य हम सबके सहयोग से चलता है। ये 5 अंगुली है ना, अलग अलग ये परिवार है, और परिवार एक साथ जब जैसे अंगुली को नीचे करते हैं ना वैसे अलग है। आप करके देखिए अपना, आपकी अंगुली भी अलग है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, अलग है। अब इसे बेंड कीजिए, साइज एक हो गया, दिस इज कॉल्ड फैमिली, एक साथ आ जाती है। तो ऐसे ब्रह्म कुमारी चलता है। और अगर आप भी पार्ट हैं इस परिवार के, आइए इसको और लीजिए। इसमें हमारे पास एक फाउंडेशन कोर्स होता है जो हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, अपने लोकल सेंटर्स पे भी जाइए और जाकर के कोर्स करें, उसको और अच्छी तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। एंड यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, वेलकम।
दीदी आप ही के लिए है, क्या पितरों का श्राद्ध लगाना जरूरी है?
ओके, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। यस, हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, और ये हम सभी आत्माएं अनेक जन्मों में अनेक प्रकार से मिलती हैं। हम भी किसी के पूर्वज होंगे, आप भी किसी के पूर्वज होंगे, और कोई हमारे पूर्वज होंगे, और हमारे परिवार, हमारे समाज और अपने मन, इन सब के एक सेटिस्फेक्शन के रूप से यदि हम उन आत्माओं को याद करते हैं जिन्होंने हमें, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे, हमारे परिवार संस्कार दिए हैं हमें, जिसके आज हम प्रेजेंट में जिसका रिजल्ट हम ले रहे हैं, जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, तो जरूर उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसा मैं पर्सनली मानती हूँ, जरूर करना चाहिए। और यहाँ ब्रह्म कुमारी इसमें भी हम भी मेडिटेशन भी करते हैं, और जैसे गुरुवार के दिन भोग होता है, परमात्मा को, शिव बाबा को भोग लगाते हैं, तो उसमें बाबा को भी, बाबा तो सबका पिता है ना परमात्मा, उनके पास भी खास रिक्वेस्ट ले जाकर के वो प्रसाद उन अपने एंसेस्टर सोल्स के लिए भी ले जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। इस कनेक्शन, ये बहुत सटल कनेक्शन है, हम ऐसे बाहर से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अंदर से एक बहुत डीप संतोष या एक बहुत गहरा अनुभव होता है, इसलिए करने से अच्छा है।
राधिका दीदी, कि प्रश्न आया है कि हम परमात्मा को फादर कह रहे हैं, परम पिता कहते हैं, उसको मदर क्यों नहीं कह सकते?
क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना, ऐसा कोई मना नहीं है। ही इज अ फादर, वो एक भजन है ना, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव त्वमेव, तो ही इज एवरीथिंग, ऑल रिलेशनशिप्स विथ हिम, सो ही इज अ मदर। सो जैसे फादर है तो वर्षा मिलता है, उनसे इनहेरिटेंस मिलती है, तो उस अनुसार आप याद करो तो उनको, आपको लगना चाहिए कि मुझे सब हक है उन पर, और उनके पास जो कुछ भी है वो मेरा है, ये हक वाला है। मदर है तो कुछ भी होता, थक जाते हैं और कुछ संभाल नहीं सकते हैं, तो जैसे उनको माँ बना दिए, ही इज आवर मदर, सो ही विल से इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर फॉर यू, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। सो विद अ रिलेशनशिप यू कैन एंजॉय ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, सो ही इज एवरीथिंग टू अस।
थैंक यू। साथ ही साथ ये प्रश्न पूछा गया है कि मुझे कई बार काफी चीजों से डर लगता है, एग्जाम्पल दिया जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो डरता हूँ, क्यों होता है ये सब?
आदत बन गई है डरने की। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक थॉट को एनकरेज करते हैं ना, तो फिर वो पूरा लाइफ में आ जाता, कुछ भी हम करेंगे तो वो जरूर याद आएगा, कुछ हुआ होगा पास्ट में या कुछ होगा किसी और के, जैसे किसी ने कहा कि उनके कलीग को कैंसर हुआ, तो उनको कुछ भी होता है, एक छोटा सा एक ऐसा कोई मस्कीटो बाइट की होंगी ना, तो वहां थोड़ा सा ऐसा स्वेलिंग आता है, तो वो सोचते कि कैंसर है, कैंसर हो सकता है। उनकी वाइफ कहती रहती कि मस्कीटो है मस्कीटो, नहीं, इट माइट बी कैंसर। सो इट्स लाइक यू प्रोग्राम योर सेल्फ, तो ये प्रोग्रामिंग को चेंज करना है. पहले तो जैसे बताए अपने निजार भाई भी, द मोर यू आर सोल कॉन्शियस, द मोर यू प्रैक्टिस आई एम अ सोल, आई एम अ सोल. सोल इज इटर्नल नो, उसकी कोई मृत्यु ही नहीं है ना. यू कैन नेवर डाई. सो द मोर यू प्रैक्टिस योर अ सोल, ये सब फियर निकल जाएंगे, पहले ही निकल जाएंगे. तो हम वो फियर से लड़ते रहेंगे तो वो और बढ़ता है. जैसे फ्रेश वाटर टैप है, उसके नीचे आप मैंने एकदम डर्टी वाटर रख दो, आफ्टर सम टाइम क्या रहेगा? फ्रेश वाटर है ना. तो दिस इज द टेक्निक. डोंट ट्राई टू स्पिल द डर्टी वाटर विथ योर हैंड्स, हैंड्स विल बिकम डर्टी. फ्रेश वाटर के अंदर रख दो और अपने आप जब परमात्मा से शक्ति लेते रहो, आत्मा समझो, उनको याद करते रहो, याद करते हो, ये डर अपने आप निकलता जाएगा. ग्रेजुअल, एकदम से नहीं, ग्रेजुअली निकलता रहेगा. दिस इज द टेक्निक एंड दिस इज द सॉल्यूशन. या
लास्ट क्वेश्चन, मेडिटेशन जो है कहा गया है कि आई ओपन करके, आंखें खुली रख के करनी है, लेकिन मुझे बहुत डिफिकल्ट होता आंखें, क्योंकि हमेशा जब मेडिटेशन करते तो मैं बंद करता हूँ, तो कैसे करें आंख खुली रखें?
बंद करेंगे ठीक है. बंद करने से क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेडिटेशन जो है आपको ब्लेंड करना है लाइफ में. आप ऐसे नहीं, यू कैन टेक चंक्स ऑफ टाइम, सुबह या शाम को ऐसा बैठ के करना नहीं होता. कई बार अपने को इतना टाइम भी नहीं मिलता होगा. आपको जैसे जर्नी करते होंगे, जैसे आप मुंबई में हैं, आप गाड़ी में हो, दो घंटे के रास्ता है, तो आप क्या करेंगे? यू शुड बी एबल टू मेडिटेट. पर वहां गाड़ी चलाते चलाते आप आंख बंद कर देंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा. यू शुड हैव अ टेक्निक दैट यू कैन मेडिटेट एनी वेयर एंड एवरी वेयर. अब जैसे आप टीवी देखते होंगे, देखते देखते आपका मन कहीं और चला गया, आप कुछ हुआ है वो इंसिडेंट याद आ गया, आपके घर में जो है वो आके पूछेंगे टीवी में क्या हुआ अभी, आप कहेंगे मुझे पता नहीं, तो वो कहेंगे आप तो टीवी देख रहे हो ना, तो आप कहेंगे टीवी तो हम देख रहे हैं पर मन उसमें नहीं था. दैट मीन्स टू से ऑल माई थिंकिंग इट्स नॉट इन वर्ड्स, इज इन इमेजेस, एंड आई कैन कीप माई आईज ओपन एंड थिंक. मोस्ट ऑफ आर थिंकिंग वी थिंक विद आर आईज ओपन ओनली नो. हम आंख बंद करके थोड़े ना सोचते हैं. और किसी को याद भी करना होगा तो आंख बंद करते क्या? आपके फादर को याद करना तो आंख बंद करेंगे? नहीं. इट्स वेरी, यू कीप योर आईज ओपन. सो चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते करने का मेडिटेशन है ये. इसलिए इफ यू प्रैक्टिस विथ योर आईज ओपन इट बिकम्स वेरी सिंपल. But yes, of course, we're used to closing our eyes. But let me tell you, if you close your eyes and you sit, you can drop off to sleep and you won't even know. Lagega bahut acha yog laga, parantu aap neend kar rahe the. Aisa hota hai.
Bahut sare question hai, lekin ek last question ki taraf aate hain. Harish bhai ji, aapke liye hai ki mera business cigarette company ka hai. यहाँ सिखाया गया कि ये सारी बुरी आदतें हैं, मैं छोड़ भी दूँ बिजनेस, मैंने छोड़ा कोई और करेगा, तो वो करना ही है. तो अगर मैं ये सिगरेट का बिजनेस करूँ, उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो उसको मैं डोनेट करूंगा, डोनेशन दूंगा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ साथ मेरा भी चल जाएगा, लेकिन मैं खुद नहीं लूंगा. राइट है?
विकारों का कभी दान नहीं होता है, विकारों का दान नहीं होता है. अगर आपका सिगरेट का बिजनेस है, आपकी घर की वो आमदनी है, तो वो आमदनी तो चालू रहनी चाहिए, लेकिन सिगरेट से नहीं और कोई गंदी चीजों से नहीं. आप वो बिजनेस को स्नैपशॉट आज का आज नहीं, लेकिन आस्ते 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 करके और कई चीजों में आप बदली कर सकते हो, जिससे आपकी घर गृहस्थी चलती रहे और आपकी आमदनी भी चलती रहे. सिगरेट के पैसों से अगर आप दान करेंगे तो आपका कोई कर्म बनता नहीं है. दो उदाहरण दे दूं. आपके पहले में कोई कॉन्फ्रेंस में कोई भाई आया था जिसकी दारू की दुकान थी, और ऐसे ही प्रश्न था, ऐसे ही सॉल्यूशन था. वो भाई ने आस्ते से अपना वो दारू का धंधा आस्ते आस्ते कम करके अपनी ड्राई फ्रूट्स की दुकान चालू की. आज उसका बिजनेस पहले से डबल है. नंबर वन, आज की कॉन्फ्रेंस में कोई एक पार्टिसिपेंट्स आया है जो 4 साल पहले अपनी रेस्टोरेंट चला रहे थे और वो रेस्टोरेंट में नॉनवेज बनाते थे, और आज मैंने सुना वो उनके युगल के साथ में उनको लेके आए हैं, और वो 4 साल पहले भी यही बात हुई थी, यही बात सुनी थी, और उन्होंने कहा कि वो जो नॉनवेज की रेस्टोरेंट थी वो मैंने आस्ते आस्ते बंद करके अभी मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चला रही हूँ, मेरा मुनाफा ज्यादा है, और एक्स्ट्रा फायदे में ये है कि मेरे युगल यानी कि उनके जो हस्बैंड थे जो यहाँ आना नहीं चाहते थे एक्स्ट्रा प्रॉफिट में आज यहाँ आ गए हैं। तो क्या हुआ, फायदा ही हो गया, घर गृहस्थी अच्छी चल गई। तो कोई भी चीज कितने भी आज फायदेमंद हो कल आपको जरूर वो नुकसान करेगी, तो वो नहीं करना है, आस्ते से वो बिजनेस को बदली करना है। इवन जो बिजनेसमैन है कहीं ना कहीं कभी 2 नंबर का बिजनेस करते थे, टैक्स नहीं देते थे, आई वुड से आप सीधे रास्ते पे आके पूरा 1 नंबर का बिजनेस करो, भले आपकी आमदनी आज के दिन में स्थूल धन में कम होगी लेकिन अविनाशी धन जो आपके मन को शांति देगा, सुकून देगा, घर में जो प्रॉस्पेरिटी आएगी, आप में जो प्रॉस्पेरिटी आएगी वो कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि वो अविनाशी है, वो जो है वो विनाशी है जो आपके काम में नहीं आएगा।
यस, एक बात और ऐड कर दी उसके साथ भी आपके कंटिन्यूशन में, और उसमें बिजनेस में भी डबल हो जाएगा, एक हम लौकिक कर रहे हैं, एक दुआओं का बिजनेस हो जाएगा, और वो जैसे भाई बता रहे कि कम आएगा, इनकम कम होगी लेकिन हेल्थ ज्यादा होगी और खुशी ज्यादा होगी, प्यार ज्यादा होगी, हमें चुनना है क्या चाहिए। थैंक यू,
बहुत बहुत थैंक्स। मतलब हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस भी रहेगी, क्योंकि खाली वेल्थ से मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल रही, और दुआएं ये कोई भी बाजार में या इसका कोई बिजनेस हो सकता है, यहां अगर यहां से मैं दुआएं दूं तो उतनी रिटर्न में मुझे वो मिलती रहेगी, लेकिन ये कोई बाजार में मुझे नहीं मिलेगी, मुझे उसको एक्ट में लाना ही पड़ेगा। तो ऐसे काफी कई प्रश्न हैं जिनके जवाब कल के सेशन में भी मिलेंगे कि परमात्मा को कैसे याद करना है, संबंध क्या रखना है, तो कल के सेशन में इसलिए वो प्रश्न मैंने इसमें नहीं लिए, और टाइम को देखते हुए हमको ये सेशन यहाँ ही खत्म करना पड़ेगा। मैं हमारे तीनों आदरणीय जो मंचा सेन है, राधिका दीदी, पद्मा दीदी, हरीश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने कई सारे सवालों के जवाब देकर हमारे सोल्यूशन दिए। अभी है कोई, काफी सारे क्लियर, वैसे तो काफी सारे स्पीकर्स ने हमारे दिए ही थे, अभी और क्लैरिटी हुई होगी। इन शॉर्ट यही कि उस परमात्मा को अगर अपना साथी बना लो, जैसे कहा कि सत्यता की राह पर चलो, वो खुदा साथ है, तो मुझे कोई डरने की बात ही नहीं। इसलिए आज से ये पक्का करना है, जो आपने गीत भी सुना होगा, कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, लेकिन यहाँ से क्या सीख के जाएंगे कि उन मुश्किलों को ही हम क्या कहेंगे कि वो मेरा खुदा ही बड़ा है। ओम शांति। हम यहाँ हम परमात्मा की याद में 2 मिनट बैठेंगे, और कल सुबह यहाँ ही हम 4 बजे संगठित रूप में अमृत वेले के लिए मिलेंगे।